जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी साथ साथ में पढ़ सकते हैं मेरे ओम अज्ञानते मेरांदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्चं श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणा रघुनाथाम्बितन्तं सजीवं सावदैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखानिताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो इस भगवद गीता कोर्स के प्रथम दिवस में आए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तुमने ये भगवद्गीता का 5 दिन का एक सत्र रखा है जिसमें हम भगवद्गीता के कुछ सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे कि भगवद्गीता है क्या या भगवद्गीता में किन विषयों की चर्चा हुई है। इन सारे चीज़ों को हम एक सार रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवद्गीता। आप जानते होंगे कि ये धर्म ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ये भगवद्गीता जो है धर्म ग्रंथ है। आपने देखा है कि जब कोर्ट कचहरी में जब कटघरे में जब खड़ा करते हैं तो वहाँ पे गीता पे हाथ रख के बुलवाते हैं, क्या गीता पे हाथ रखो और बोलो कि सही जो बोलेंगे सही बोलेंगे। हालांकि झूठ बोलते हैं लेकिन क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो धर्म स्थान है, वहाँ पे कुछ न्याय किया जाता है लेकिन उससे पहले उनको प्रण दिया जाता है ना। तो इसलिए गीता बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली हमारे जीवन में। तो हम इन 5 दिनों में इस गीता के विषय में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कोई कथा नहीं है, जैसे कथा में क्या होता है कि कथाकार कथा करता है, बाकी सब लोग बैठ के श्रवण करते हैं और उसमें श्रद्धा से भाव से श्रवण करते हैं और कथाकार कथा करते ही जाता है ना। ऐसा नहीं है, ये कथा स्थान नहीं है। ये हम कैसा है एक चर्चा करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो हम आपस में चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप विश्वास ही करिए, ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ विश्वास ही करिए ऐसा नहीं है। आप क्यों किस लिए ऐसा क्यों है नहीं, ऐसा मैंने ऐसा सुना था, ऐसा मैंने सुनी थी, ये सारे चीजें जो है ना आप ये क्लियर कर सकते हैं। तो हम ये जो इसलिए हमने एक क्लास के जैसा है तो इसलिए देखेंगे क्यों बंद हो गया। तो एक क्लास के जैसा है हाँ, जैसे कि बच्चा जाता है ना पढ़ने के लिए स्कूल में, तो इसलिए मैंने नोट्स बुक भी दिया हूँ, कुछ जो पॉइंट्स है तो आप नोट्स कर सकते हो, क्योंकि कई सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत उपादेय रहेंगे, उसको आप ध्यान रखेंगे और उसको डेली की जीवनचर्या में याद रखेंगे ना, तो आपको बहुत मदद मिलेगा। इसलिए मैंने इस प्रकार का थोड़ा अरेंजमेंट किया है। तो ये बुद्धि प्रधान ये सेमिनार जैसा है, एक कोर्स जैसा है, क्लास जैसा है, एक कोई कथा नहीं है। तो आप प्रश्न पूछेंगे, मैं कुछ उत्तर दूंगा, या फिर मैं कुछ पूछूंगा, आपको कुछ डाउट हो रहा है तो वो चीजें पूछेंगे, इस प्रकार का आदान प्रदान। देखिये भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय है। भगवद गीता में कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। 18 अध्याय और 701 श्लोक है, 701 श्लोक। तो 18 अध्याय और 701 श्लोक है इसमें, और विशेषकर इस जो है ना विषय जो है ना बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरा विषय है, सागर के समान है, लेकिन इस सागर को हम 5 दिनों के अंदर एक गागर में बैठ भरने का प्रयास करेंगे। 5 दिनों के अंदर है तो बहुत विशाल है, बहुत सागर के समान है, लेकिन अगर ध्यान से अगर हम आप श्रवण करेंगे, अगर हम इसको समय अनुसार अगर करेंगे, तो इस सागर को भी हम एक गागर में 5 दिन के अंदर भरने का प्रयास करेंगे। तो कुछ लोग इसको समझने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं, वो बड़े बड़े ऐसे लोग होते हैं जो कि समझने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं, केवल इस गीता को समझने के लिए। ये बहुत छोटी सी ग्रंथ है, लेकिन इसको समझने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है कभी कभी। लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हम ये 5 दिनों में बहुत सारे विषयों को बहुत सुंदर तरीके से समझ जाएंगे। तो भगवद गीता में, इस गीता में 5 विषय वस्तुओं का वर्णन है, गीता में 5 विषय वस्तुओं का वर्णन है। सर्वप्रथम ईश्वर भगवान के विषय में वर्णन है, और उसके बाद दूसरा विषय वस्तु जो है वह है जीव, अर्थात आत्मा, जीवात्मा, हम सब जीव के विषय में वर्णन है, और तीसरा जो है प्रकृति के विषय में वर्णन है। जो दिख रहा है ना संसार आपको, प्रकृति किस प्रकार से ये संसार, इसके विषय में वर्णन है, संसार है क्या, प्रकृति है क्या, ये सारे चीजों के विषय में भगवद गीता में वर्णन है, तीसरा विषय वस्तु है। और उसके बाद कर्म के विषय में वर्णन है, अलग अलग प्रकार के कर्म जो लोग कर रहे हैं संसार में, उन कर्मों के विषय में वर्णन है कि कौन सा कर्म करने से क्या मिलने वाला है, किस प्रकार का हमको कर्म करना चाहिए, ये सारी चीजों का वर्णन भगवद गीता में प्राप्त होता है। और अंततः 5वां जो विषय वस्तु है वह है काल, काल के विषय में वर्णन है। तो भगवद गीता में टोटल 5 विषय वस्तुओं का वर्णन आता है, 5 विषय वस्तुओं का वर्णन हुआ है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, है ना, ये 5 विषय वस्तुओं का वर्णन भगवद गीता में आता है। तो इस प्रकार अगर हम इसको ध्यान से अगर समझेंगे, ध्यान से समझने का अगर प्रयास करेंगे, तो इन 5 विषयों को हम 5 दिन के अंदर अगर हम ये समझ सकते हैं। तो मूलतः है इन 5 वस्तुओं का चर्चा, और कौन सा वस्तु हुआ है चर्चा, ईश्वर, ध्यान से सुनेगा, मैं पहले बोला कि ये कोई कथा नहीं है, एक क्लास है, मैं प्रश्न भी पूछूंगा, उत्तर भी मांगूंगा, होमवर्क भी दूंगा, नहीं देंगे तो ब्रेंच के ऊपर खड़ा करूंगा। तो इसलिए ध्यान से सुनेगा, 5 विषय वस्तुओं का चर्चा हुई है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 चीज का वर्णन भगवद गीता में आता है। और देखिए ये जो ये 5 तत्व जो है ना, सारे वेद और उपनिषदों में इन्हीं 5 तत्वों का क्लेरिफिकेशन दिया गया है, वेद में इन्हीं 5 तत्वों के विषय में समझाने का प्रयास किया गया है। बड़े बड़े वेद पुराण जो है ना, इन 5 विषय वस्तुओं को ही समझाने के लिए इतना सारी बातों को करते हैं। तो इस प्रकार चलिए हम आज शुरू करते हैं। आज हम विशेषतः केवल भगवद गीता के परिचय के बारे में, है इसमें 5 विषय वस्तु, लेकिन आज केवल ये है क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये भगवद गीता है क्या, भगवद गीता का परिचय, ये गीता है क्या, इसका परिचय ही आज हम आज के सत्र में सुनेंगे। क्योंकि जब तक इसका परिचय किसी के विषय में जब तक हम जानते नहीं है ना, तब तक उसके विषय में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होता है ना, किसी की महिमा नहीं सुनते हैं, या किसी को जब तक जानते नहीं तब से हम उससे बात भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले भगवद गीता है क्या इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये भगवत गीता क्यों लिखा गया है, भगवान ने क्यों बोला है इसको, किस लिए हमारे जीवन के लिए उपादेय है, कैसे है, ये सारी बातों को कितना जानना जरूरी है, इस सारी बातों को हमें आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो मूलतः विशेष है विषय है वो क्या है, भगवद गीता का परिचय, परिचय के विषय में एकदम शुरू करेंगे, एकदम नए से। ऐसा आपने भगवद गीता का नाम भी सुना रहेगा, बहुत सारी बातों को भी सुना रहेगा, कभी कभी बहुत सारे कोटेशन कोट आते रहते हैं, है ना, मॉर्निंग साधना इत्यादि इत्यादि, व्हाट्सएप पे क्या क्या सब चीजें कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं लोग, कुछ ना कुछ कभी ना कभी आता ही रहता है। लेकिन आज हम बिल्कुल नए से शुरू करेंगे, बिल्कुल नए से, एकदम अपने माइंड को क्लीन कर दीजिए, है ना। कभी कोई आपने देखा है कि पहले समय लोग गाना रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड कराते थे ना, कैसेट होता था जो रील वाला, अभी तो जमाना गया, लेकिन कैसेट होता था रील वाला, क्या करते थे, बहुत सारे गाना को लिखते थे, नोट्स बनाते थे, और ये गाना हमको रिकॉर्ड करके चाहिए, दुकान पे देते थे कि ये गाना हमको रिकॉर्ड करके चाहिए, है ना। तो दुकान वाला क्या करता था, वो गाना वो उस रील में चढ़ा के उसको देता था, और बड़ा इंतजार करते थे कि चलो मेरा रिकॉर्ड होके अभी आएगा गाना, है ना। लेकिन कोई कोई तो नया अपना लिस्ट देता था, नया कैसेट आता था उसके पास, लेकिन कोई कोई क्या करता था, जो अपना पुराना वाला कैसेट था वो लेके जाता था उसके पास, और अपना लिस्ट देता था, बोलता था कि उसके ऊपर डबिंग कर दो, है ना, डबिंग करता था, नया नहीं खरीदता था, पुराना वाला दे देता था, उसके ऊपर डबिंग करवा देते, है ना। तो क्या होता था, डबिंग करके मिल जाता था उसको, और जब उसको चलाता था, चलाते हैं जब उसको, तो क्या होता है, जो नया डबिंग किया हुआ तो बजता ही है, लेकिन कभी कभी बीच में पुराना भी बजने लगता है, है ना, क्योंकि पहले से भरा हुआ था उसमें, और बराबर वो डबिंग नहीं हुआ, तो बीच बीच में कभी कभी पुराना भी आ जाता था। तो इसलिए कुछ चीजें, अगर बहुत सारे वासंतर ये सारे चीजें जानते हैं तो थोड़ा सा आज क्लीन कर दीजिए, ताकि हम एकदम नए से शुरू करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, एक प्रश्न से शुरू करेंगे आज का जो सत्र है, एक प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न यह है, देखिए हमने टोटल 100 फॉर्म बनाया था, 100 जो ये तो सबको दिया था ना, हमने टोटल 100 बनाया था, क्या इस घर में 100 आ सकते थे, नहीं आ सकते, फिर भी मैंने 100 बनाया था। तो दिए भी सबको, 4-5 लोग को दिए, और सब लोग ना, आप लोगों ने काफी लोगों को बुलाया भी, बहुत सारे लोग का रजिस्ट्रेशन भी किया, ये सारे किया, लेकिन क्या सब लोग आए, नहीं आए, है ना, नहीं आए ना, सबका अनुभव है, सब लोग इस टेंशन में बैठे हुए कि सब जिनको बुलाया नहीं आए। तो हमने पंपलेट छापा इतना, उसके बाद सब लोगों ने एक दूसरे से बात भी किया, रजिस्ट्रेशन भी किया, काफी रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, सब लोगों ने नाम भी दिया, इतना 18-20 नाम भी है, तो रजिस्ट्रेशन भी हुआ, लेकिन देखा हमने कि लोग नहीं आए। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्या चीजें उन लोगों में है जो कि नहीं है, और आप में है कि आप इधर आए हैं, प्रश्न पहले समझ लीजिए। प्रश्न ये है कि आप इधर क्यों आए हैं, और जिनको आपने बुलाया, रजिस्ट्रेशन भी किया, वो क्यों इधर नहीं आए, ये प्रश्न का जवाब चाहिए मुझे, बताइए आप क्यों आए इधर, और जो नहीं आए उनमें क्या ऐसा चीज नहीं है जो कि वो नहीं आए। प्रश्न समझा आपने कि आप यहां पे आए तो क्या ऐसा आपके अंदर गुण है, क्या चीज है जिससे कि आपको यहां पे खींच लाया, और जो लोग नहीं आए उनके अंदर क्या ऐसा चीज नहीं है कि जो कि और नहीं आए।
गए जन्म के जो संस्कार है वो
हमें, हाँ, गए जन्म के संस्कार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो जो ये प्रश्न का एक शब्द में जवाब चाहिए, जो कि ये है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, बताइए, और कोई दूसरा बताइए, रुचि है, रुचि है, ये भी ठीक है, कृष्ण कथा सुनने के, देखिए जो नहीं आए हैं उनके अंदर भी रुचि है, कभी कभी कहीं ना कहीं जाते हैं, उनके अंदर भी रुचि है, पूर्व जन्म के संस्कार जो ये सारे चीजें उनके अंदर भी है, लेकिन फिर भी नहीं आए, एक चीज है जो कि उनको नहीं, जो कि मैं जानना चाहता हूं, एक चीज है जो कि कॉमन है, जो कॉमन है उनके अंदर नहीं है इसलिए वो नहीं आए, आपके अंदर है इसलिए आए, बताइए, और कोई,
ज्ञान,
कृष्ण, देखिए कृष्ण की कृपा हर एक जीव के ऊपर है, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, रामायण में वर्णन है, और दूसरे कृष्ण की कृपा है इसलिए वो सांस ले पा रहे हैं, कृष्ण की कृपा है इसलिए वो खा पा रहे हैं, कृपा है उनके ऊपर, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि उनके अंदर नहीं है, और कोई क्या क्या
श्रद्धा
श्रद्धा, ये भी ठीक है लेकिन ये भी पूर्ण नहीं है। देखिए हमने बहुत सारी चीजों को बोला कि किसी का भाग्य, किसी का पर पिछले जन्म का कुछ कर्म है, और या फिर कृपा, भगवान की कृपा, या कृष्ण कथा सुनने की रुचि इत्यादि इत्यादि, हाँ पुण्य, ये सारे चीजें, ये सारे चीजें, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है सही है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। एक चीज, एक ऐसी चीज है, चलिए मैं एक क्लू देता हूं, एक क्लू देता हूं, वो चीज जो उनके में नहीं है, वो ऐसी चीज है जो कि पशुओं में नहीं होती है। अब बताइए, एक क्लू दिया, मैं जो चीज जानना चाहता हूं ना, वो पशुओं में नहीं है, वो मनुष्य में ही होती है। बताइए, पशु में नहीं है, माता जी बुद्धि, हाँ कभी कभी देखेंगे कि बुद्धि पशुओं में ज्यादा है, कभी कभी देखे ना, एक पुलिस लोग कुत्ते लोग को लेके चलते हैं, है ना, वो बहुत सारा बुद्धि जो इस्तेमाल करते हैं, और वो जो चीज हम जहाँ नहीं पकड़ पाते वो पकड़ लेते हैं, है ना। बुद्धि उनमें भी है, और
वो भक्ति नहीं कर सकते,
बोल सकते क्यों नहीं बोल सकते, आपस में बोलते तभी तो एक दूसरे की बात कर रहे
हैं।
चलिए, लेट हुआ इसलिए मैं जल्दी जवाब दे देता हूँ, ज्यादा मंथन नहीं करता हूँ। उत्तर यह है कि जिज्ञासा, जिज्ञासा समझते हैं क्या है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जो है ना वो उनके अंदर नहीं है, अगर है भी तो इतने मात्रा में नहीं है जो कि उनको यहां पर नहीं ला पाई, और वो जिज्ञासा की जिज्ञासा आपके अंदर है जो कि आपको यहां पर खींच लेके आया। वो जिज्ञासा कैसी, अरे चलो हमारे बाजू में एक महाराज रहता है, क्या बोलता है देखते हैं, रोज जाता आता है, नीचे उतरता है, स्कूटी से जाता है, गाड़ी से जाता है, मंदिर जाता है, घूम घूम के आता है, इधर रात को इधर आता है, फिर सुबह जल्दी उठ के भाग जाता है, चलो देखते हैं क्या बोलता है, किसी न किसी रूप में या कुछ जानने की जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा कि क्या है कैसा है, तो ये जिज्ञासा जो है वो आप लोग को आपके अंदर है इसलिए आपको खींच लाया, और वो जिज्ञासा उनके पास नहीं है इसलिए वो यहां पे नहीं आ पाए, इतना बुलाने के बाद भी नहीं आ पाए। वैसे ये जो जिज्ञासा है ना पशुओं में नहीं होती है, ये जिज्ञासा पशुओं में नहीं होते। सारे समस्त वेद उपनिषदों का जो सार है ना, वेद व्यास जी ने एक सूत्र के रूप में रचना किया, वेद उपनिषद कौन रचना किया, वेद व्यास जी ने रचना किया, तो उसको एक सूत्र के रूप में, और वो सूत्र का प्रथम मंत्र जो है ना वो है वेदांत, वो सूत्र क्या है, वेदांत सूत्र, और उस सूत्र का प्रथम जो मंत्र है ना वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थ मतलब इसलिए, किस लिए, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करो, तो प्रश्न उठता है किस लिए, तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो जिज्ञासा करो, ये प्रथम मंत्र है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है तो हमको जिज्ञासा करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो दूसरे शब्दों में हम जिस दिन जिज्ञासा करते हैं, इस मनुष्य जीवन में हम जिस दिन जिज्ञासा करते हैं उसी दिन से हमारा मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है, उसी दिन से मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। वेदव्यास जी एक बहुत सुंदर श्लोक की रचना करते हैं, उस श्लोक यह है, ध्यान से सुनिए, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभि शमाना। वेदव्यास जी कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन, समझ रहे हैं, आहार मतलब क्या, खाना, आहार निद्रा, निद्रा मतलब सोना, आहार निद्रा भय, भय मतलब डर, आहार निद्रा भय मैथुन, मैथुन मतलब पुत्र की उत्पत्ति करना या जीवों की उत्पत्ति करना इत्यादि इत्यादि। तो वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम, ये जो चार चीजें है ना ये पशु और मनुष्य में समान है। ये चार चीजें पशु में भी है और ये चार चीजें मनुष्य में भी है। आपका प्रश्न हो सकता है ऐसा, अरे हम तो बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना के अच्छा खाते हैं, हम तो अच्छा आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन आपका अच्छा वाला आहार ना आप सुअर को देंगे वो नहीं खाएगा, उसको मल में ही रुचि होता है, उसका आहार मल ही है, उसमें बहुत सुंदर है, उसका आनंद आता है। क्रिया क्या है? खाने की, एक कॉमन है, हम भी खाते हैं पशु भी खाता है ना। निद्रा, हम कहेंगे बहुत सुंदर से हम सोफा सेट पे या बहुत सुंदर बेड के ऊपर सोते हैं, आप किसी जानवर को बेड के ऊपर सुलाओ नहीं सोएगा, उसको नीचे ही जहां पे उसको है वहीं पे उसको आनंद आता है सोने में। आहार निद्रा भय डरना, हम भी डरते हैं अपने जीवन से है ना, कुछ हो ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बहुत सारे डर है। और क्या है, जानवर भी डरता है अपनी रक्षा करने के लिए, एक पत्थर होता है कुत्ता भाग क्यों जाता है, क्योंकि उसको डर है मार देगा मुझे, है ना। तो उसको भी डर है हमको भी डर है, है ना, बहुत सारे डर है ना, बहुत सारे चीजों से डर। किसी से ना डरे तो फिर तो होम मिनिस्टर से तो डरना ही पड़ता है ना। तो आहार निद्रा भय मैथुन, मैथुन मतलब वह भी बच्चे संतान उत्पत्ति करता है, हम भी करते हैं संतान उत्पत्ति। तो वेदव्यास ऋषि क्या कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम, ये नर में और पशु में दोनों में क्या है, समान है, ये चारों चीजें समान है। तो क्या ऐसी चीज है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है और जानवर जानवर कहलाता है? तो कहते हैं कि धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्मे नहीं ना पशु विषमा। एक धर्म ऐसी चीज है, एक जिज्ञासा ऐसी चीज है मनुष्य के अंदर जो कि वो कर सकता है, कुत्ता जिज्ञासा नहीं कर सकता है। आपने देखा है कुत्ता जिज्ञासा करके कभी मंदिर गया, मंदिर के अंदर नहीं गया, वो जाएगा भी तो उसको भगा दिया जाएगा। तो ये जिज्ञासा जो है, ये धर्म जो है वो मनुष्य ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते हैं। तो जिसके अंदर ये जिज्ञासा नहीं है या जिसके अंदर इस प्रकार के धर्म की कार्यकलाप करने की इच्छा नहीं है वो क्या है, सामान्य एतत् पशुभि नराणाम, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि मैंने चारों चीजें बताया था, आप समझ गए होंगे कि ये समान है। जब तक इच्छा नहीं होती कुछ अच्छे कार्य करने की, धर्म करने की, कुछ अच्छे जिज्ञासा करने की या ज्ञान प्राप्त करने की, जब तक मनुष्य मनुष्य इच्छा नहीं करता है, जिज्ञासा नहीं करता, तब तक वो मनुष्य नहीं कहलाता है। वेदव्यास ऋषि क्या कहते हैं, वो पशु के समान है। और भी एक बात को बताते हैं, नीति में इस बात को लिखा गया है कि एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम त्रे नित्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाण चरयन्ति। नीति का श्लोक है जिसमें कहा गया कि एशाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, और अगर हमारे जीवन में विद्या नहीं है और तप नहीं है और दान की प्रवृत्ति नहीं है, ज्ञान तप दान, और तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये सारी चीजें नहीं है वह भूमि के ऊपर भार है, भूमि के ऊपर भार है, बोलते हैं ना कि तुम भूमि के ऊपर भार है, बोझ है भूमि का, बोझ है तुम, कहते हैं ना लोग कभी कभी तुम बोझ है। तो जी ये सारी चीजें जिसके अंदर नहीं है, जिस मनुष्य के अंदर, वो बोझ है इस पृथ्वी के ऊपर, वो पशु के समान है, ये वेदव्यास ऋषि कहते हैं। तो चलिए हम अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने समझा कि आज यहाँ पे जितने लोग भी इतने सारे लोग आए हैं, तो आपने एक क्लियर कर दिया कि आज से हाँ हम पशु नहीं हम मनुष्य हो गए हैं। तो मनुष्य जीवन की शुरुआत किससे होता है, जिज्ञासा से, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन की शुरुआत जिज्ञासा से होता है। अगर बच्चा है बहुत छोटा बच्चा है, अगर वो जिज्ञासा करता है तो बाप का भी बाप है, वो बाप का भी बाप है, क्योंकि उसने बहुत कम समय में जिज्ञासा करना प्रारंभ कर दिया। बहुत बूढ़ा है लेकिन जिज्ञासा नहीं कर रहा है, तो तो बहुत छोटा है वो, बहुत छोटा है लेकिन बालक है। एक समय की बात है कि जब ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब ये 500 वर्ष पूर्व आए थे तो उस समय उनके सामने बाप और बेटे आ रहे थे, एक बाप और उसका बेटा आ रहा था। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उस बाप से पूछा कि ये कौन है, तो वो बाप ने क्या बोला, है मेरा बाप है। चैतन्य महाप्रभु बोले छोटा बच्चा कैसे तुम्हारा बाप हो सकता है, क्योंकि ये प्रथम जिज्ञासा इसने किया और इसके वजह से मैं जिज्ञासा करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए ये मेरा बाप है क्योंकि मैं उससे सीखा। तो जिज्ञासा जो करना शुरू कर देता है उसी दिन से उसका मनुष्य जीवन प्रारंभ हो जाता है। तो महत्वपूर्ण क्या बात है, जिज्ञासा। तभी ये जिज्ञासा देखिए दो प्रकार की होती है, जिज्ञासा दो प्रकार की होती है, एक होती है अच्छी जिज्ञासा और दूसरी होती है बुरी जिज्ञासा। जिज्ञासा के दो प्रकार हैं, अच्छी और बुरी। तो हम बुरी जिज्ञासा जो कि हम करते ही रहते हैं, आज तक बुरी ही जिज्ञासा किया क्या, सदियों से करते आ रहे हैं, बुरी जिज्ञासा ही कर रहे हैं। शनिवार का दिन है, पता है कि कल छुट्टी है, तो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, देखते हैं कौन सा होटल में जाना है खाने के लिए, कौन सा पिक्चर लगा हुआ है इसमें थिएटर में, ये सारी चीजें इंक्वायरी करते हैं। क्यों, क्योंकि कल छुट्टी है। तो ये जिज्ञासा ही हुआ, ये जिज्ञासा ही है, लेकिन कैसी जिज्ञासा है, ये बुरी जिज्ञासा है। मनुष्य जीवन का जो रियल जिज्ञासा ये नहीं है, ये बुरी जिज्ञासा है जो कि हम कंटिन्यू करते रहते हैं। इस प्रकार की बुरी जिज्ञासा हम कंटिन्यू करते रहते हैं अनेक प्रकार से है। बैठते हैं सब ग्रुप में और ये साड़ी आपने किधर से लिया है, कौन से दुकान से लिया है बताइए, मैं भी जाऊंगी उधर लेने के लिए, इत्यादि रहता है। ये सारे जितने भी जीवन में हम पूरा दिन बुरी जिज्ञासा करते रहते हैं, बुरी जिज्ञासा करते हैं। तो इस प्रकार से मेरा प्रश्न है कि जितनी भी जिज्ञासा आज तक किया इतना सारा, क्या उससे सुख की प्राप्ति हुआ, सुख की प्राप्ति हुआ नहीं, सुख की प्राप्ति नहीं हुआ। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा यही प्रश्न है, इतना मेहनत कर रहे हैं, ये सारे चीजें कर रहे हैं, फिर हमको सुख क्यों नहीं मिल रहा है, हमको सुख क्यों नहीं मिल रहा। और कुछ चीजें हमको सुख लगता भी है ना, वो बहुत टेम्पररी होता है, एक दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए होता है, बाद में दूसरे दिन फिर से दुखी हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम जो जिज्ञासा कर रहे हैं वो बुरी जिज्ञासा है। मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य जिज्ञासा करना है, तो हम वो रियल जिज्ञासा ना करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे बुरी जिज्ञासाएं करते रहते हैं दिन भर, जिसके कारण हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाता है। तो ये हुआ कुछ बुरी जिज्ञासा जो कि हम करते ही रहते हैं। और अच्छी जिज्ञासा, अच्छी जिज्ञासा क्या है, तो अच्छी जिज्ञासा के विषय में वर्णन है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को पूछा कि तुम कैसे हो। तो इतने बड़े गोस्वामी, इतने बड़े महात्मा, उन्होंने क्या जवाब दिया पता है, मैं कैसा हूं मैं खुद नहीं जानता हूं, मैं कैसा हूं मैं खुद नहीं जानता हूं, और मैं इस संसार के इस त्रिताप से क्यों इस दुख को भोग रहा हूं, मैं मुझे नहीं पता है कि मैं क्या हूं, मैं क्यों इस दुख को भोग कर रहा हूं, क्यों दुख को प्राप्त कर रहा हूं मैं, तो मैं कौन हूं मैं खुद ही नहीं जानता हूं। ये अच्छी जिज्ञासाओं में से है। देखिए हम पूछते हैं किसी को कैसे हो तो तुरंत आता फाइन ओके। संसार का सबसे बड़ा झूठ हम सुबह से बोलना प्रारंभ करते हैं कि बहुत अच्छा है, उनके पास कल 10-15 मिनट बैठिए, फिर वो शुरू करते हैं कि अरे तो ठीक है, लेकिन बाद में फिर एक एक करके ये प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है, तीसरा प्रॉब्लम, चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन पूछते हैं कैसे हो तो सबसे पहला वर्ड क्या निकलता है, फाइन, बहुत सुंदर, अच्छा है। लेकिन 10 मिनट केवल बैठिए उनके पास, तो फिर एक एक करके वो निकालना शुरू करते हैं, क्या समस्या है, क्या समस्या है। तो अच्छी जिज्ञासा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अच्छी जिज्ञासा क्या है, मैं कौन हूं, हू एम आई, मैं कौन हूं, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और तीसरा अच्छी जिज्ञासा कि मैं दुख को क्यों भोग रहा हूं, मैं बहुत सारे अच्छे कार्य कर रहा हूं फिर भी दुखी हूं मैं, ये अच्छी जिज्ञासाएं हैं। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और मैं दुख को क्यों भोग रहा हूं, मैं दुखी क्यों हूं, ये अच्छी जिज्ञासा है। जैसे कि मैं कौन हूं, तो हो सकता है मैं बोलूंगा कि आप कौन है, तो कहो क्या कहोगे, ये दे रहा हूं, है ना, सब अपने नाम से पहचान देते हैं। कोई बोल सकता है मैं डॉक्टर हूं, कोई बोल सकता है मैं इंजीनियर हूं। पूछा जाए उनसे तो जो उनकी पोस्ट पोजीशन रहेगा वो सारे चीजें बोल देंगे या तो अपना नाम बताएंगे। तो मेरा प्रश्न है कि आज जो डॉक्टर है क्या 50 साल 100 साल पहले वो डॉक्टर था? नहीं ना। क्या 50 100 साल बाद वो डॉक्टर रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये जितनी भी पहचान है, कोई इंजीनियर है तो क्या 50 साल पहले वो इंजीनियर था या 50 साल बाद रहेगा वो? तो ये जितनी भी पहचान है कि मैं ये हूं, अपना नाम सो एंड सो बताता है, ये जितनी भी पहचान हम देते हैं किसी को पूछने के बाद, ये सब पहचान जो है टेम्परेरी है, इसका अस्तित्व नहीं है, टेम्परेरी है पहचान। तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली प्रश्न है कि मैं कौन हूं। हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूं, बहुत बड़ा प्रश्न है। और सारे दुख का जो कारण है ना, ये मैं कौन हूं इसको हम भूल गए, यही कारण है दुख का। सारे दुख का समस्या, हम सोचते हैं ना हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, ये सारे दुखों की जो समस्या है यही कारण है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं। मैं कौन हूं, अपने आप को भूल चुके हैं, इसलिए सारे जीवन की समस्याएं हैं व्यक्ति के पास। जैसे कि आगरा में ना एक बहुत बड़ा पागलखाना है, गए हैं आप कभी? अरे मैं भी गलत प्रश्न पूछा, आप क्यों जाएंगे, आप अच्छे खासे पागलखाने क्यों जाएंगे? कभी देखे वो भी सुने हैं या फिर पागलखाने के विषय में सुने ही होंगे ना, कि पागलखाना होता है उसकी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती है और उसके अंदर बहुत सारे पागल भरे रहते हैं। वो क्यों है वहां पे? क्योंकि अपने आप अपनी पहचान भूल गए, वो अपने आप को भूल गए वो। चलिए एक उदाहरण छोड़िए, कभी आप लोग बॉम्बे गए होंगे, बॉम्बे में बहुत लोकल ट्रेनें चलती हैं। मान लीजिए स्टेशन पे आप खड़े हैं, स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन आई और आप उसमें अपना पहचान भूल गए और क्या किया, आप अपना पहचान भूले और क्या, पहचान भूल कर आप लेडीज डब्बे में चढ़ गए, फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? पहचान भूल के लेडीज डब्बे में चढ़ गए तो क्या होगा? पिटेंगे। तो पहचान व्यक्ति जब भूल जाता है तो उसके बाद उसको दुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। अपनी पहचान वो भूल गया ना तो उसके बाद दुखी होने लगता है वो। ये मैं कौन हूं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जीवन का, यही हम भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन है, ये भूल चुके हैं हम। यही सबसे बड़ी दुख की समस्या है कि हम कौन है, हम अपने आप को अपना पहचान बिल्कुल भूल चुके हैं। इसको हम क्लियर करेंगे आगे के सत्रों में कि मैं कौन हूं, ये सारी चीजें चर्चा आएगी, लेकिन एक संक्षिप्त में मैं इसको अभी वर्णन किया आप लोग के सामने। और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य केवल सोना खाना पीना यही है जीवन का लक्ष्य? कमाना, किसी व्यक्ति से पूछा जाता है आप कमाते क्यों है, किस लिए कमाते हैं? अच्छे से खाने के लिए, अच्छे से रहने के लिए। अच्छे से खाते और अच्छे से रहते क्यों है? ताकि अच्छा से चैन से सो सके। अच्छे से सोते क्यों है? ताकि दूसरे दिन फिर से कमाए। कमाना खाना सोना, कमाना खाना सोना, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? कमाना खाना सोना बस यही जीवन का लक्ष्य है? नहीं, यही सारे चीजें हम भूल चुके हैं इसलिए दुख को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम यही सारे चीजों को अपना लक्ष्य बना लिए हैं। पूरा जिंदगी व्यक्ति कमाना खाना सोना में बिता देता है और उसको सुख की प्राप्ति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रियल चीजें वो भूल चुका है। उन चीजों की हम चर्चा करेंगे आगे के सत्रों में, लेकिन इतना ही समझ लीजिए कि कमाना खाना सोना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, जो कि हम यही कर रहे हैं, पूरा दिन भर के रूटीन में यही करते हैं, दिन भर के रूटीन में, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। किसी से पूछा जाए आप योगा क्यों करते हैं तो बोलेगा अच्छा फिट रहने के लिए। फिट क्यों रहना चाहते हैं? ताकि कोई रोग ना हो, ताकि अच्छे से संसार की वस्तुओं को भोग कर सके। तो भोग करेंगे तो फिर रोग होता है, फिर रोग होगा तो फिर हॉस्पिटल जाएंगे। तो क्या यही रोगा भोगा योगा यही सारे चीजें चलता रहेगा, यही जीवन का लक्ष्य है? नहीं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो ये कमाना खाना सोना यही जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य और कुछ है, हम आगे चर्चा करेंगे दूसरे सत्रों में। देखिए ये धन कमाना जो है ना, जो संसार में आज इस संसार में सब लोग की दौड़ मची है धन कमाने के लिए, दौड़ मची है। ये जो धन कमाना है ना, देखिए धन कमाना भी हजारों परेशानियों को लेकर आता है, लेकिन मैं उस धन की बात कर रहा हूं जरूरत से ज्यादा धन। आपने देखा है कभी कोई कितने करोड़ करोड़पति लोग हैं, अरबों की संपत्ति है उनके पास, लेकिन फिर भी वो दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं। जितने भी आप टाटा अंबानी बिरला जिसको भी देखा, पूरा दिनों लोग बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं कि मस्त से केवल दिन भर आराम कर रहे हैं। कितना बड़ा बड़ा टेंशन है उनके जीवन में, क्योंकि जीवन का यह लक्ष्य नहीं है कमाना खाना सोना, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो कितना भी धन, देखिए धन श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि धन भी, उस धन की बात कर रहा हूं जरूरत से ज्यादा धन भी अनेक परेशानियों को लेकर आता है, वर्णन है भागवतम में अनेक परेशानियों को लेकर आता है। तो देखिए धन को लेकर अगर सोचा जाए तो इस संसार में जो है ना मनुष्य की खोपड़ी कभी भरता नहीं है धन से। किसी के पास आज बहुत छोटे जगह में रह रहा तो सोच रहा कि बहुत अच्छा हमारा फ्लैट हो जाए, बहुत अच्छा बंगलो हो जाए, या गाड़ी आ जाए, कल ये आ जाए, परसों ये आ जाए, एक एक करके वो चीज प्राप्त होता है और दूसरे के विषय में सोचने लगता है, नहीं इससे और अच्छा चाहिए। किसी के पास फोर व्हीलर गाड़ी है तो सोचता नहीं इससे और अच्छा होना चाहिए, और मर्सिडीज आना चाहिए इत्यादि, उससे भी बड़ा, फिर धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती, एक पूरा होता है, ऐसा नहीं कि उधर स्टॉप हो जाता व्यक्ति, बढ़ती जाती है उसकी। तो ये मनुष्य की जो खोपड़ी है ना कभी भी भरती नहीं है। जैसे कि एक बार का घटना है कि नारद मुनि का एक भक्त था, आपने सुना नहीं रहेगा कि नारद मुनि के भी भक्त होते हैं क्या, ना कोई नारद मुनि की भी तपस्या करता है क्या, ठीक है शिव जी ब्रह्मा जी कृष्ण इत्यादि इत्यादि दुर्गा गणेश सब लोग उनकी तपस्या करते हैं, लेकिन नारद मुनि की तपस्या कोई करता है, नहीं सुने होंगे क्योंकि नारद मुनि कौन है, परम वैराग्य, उनके पास कुछ है ही नहीं, तपस्या करेगा तो उसको मिलेगा क्या, वो यही देंगे भक्ति देंगे और बैराग ही देंगे और कुछ नहीं देंगे, जो जिसके पास जो रहेगा वही देगा ना। लेकिन एक ऐसा भक्त निकला जो कि नारद मुनि की तपस्या किया, नारद मुनि को प्रकट किया, नारद मुनि को प्रकट करने के बाद जब नारद मुनि प्रकट हुए वो सोचे कि चलो एक तो मेरा कोई भक्त निकला जो इतनी कठोर तपस्या किया। तो जब वो प्रकट हुए तो पूछे क्या चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे बहुत सारा धन संपत्ति चाहिए। नारद मुनि बोला गलत नंबर लगाया तुमने, डायल किया गलत नंबर डायल कर दिया, भाई मेरे पास धन संपत्ति कुछ है नहीं, मेरे पास संपत्ति है ही नहीं, और जो चीज मेरे पास है नहीं वो कहां से दूंगा, मैं तो सोचा था तुम कुछ भक्ति भावना मांगेगा तो मैं भक्ति वगैरह प्रदान कर दूंगा तुमको, लेकिन नहीं 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 मैंने आपको इतना सालों तक तपस्या किया, मेरा वेस्ट हो गया इतना टाइम, आप मुझे धन दीजिए। बोला कि मैं नहीं दे सकता, जो मेरे पास नहीं है नहीं दे सकता, कृपया मुझे क्षमा करना मैं जा रहा हूं। वो व्यक्ति बोला कि ठीक है एक काम करिए, आप धन नहीं दे सकते ना कोई बात नहीं है, एक काम करिए एक लेटर लिख के आप दे दीजिए कुबेर जी के पास, आप लेटर लिख के दीजिए और मैं उसको कुबेर के पास लेके जाऊंगा, आप कुबेर को एक लेटर लिख दीजिए कि इसको कुछ धन संपत्ति दे देना। तो वो नारद मुनि बोला ठीक है चलो ये काम कर सकता हूं मैं। तो नारद मुनि ने क्या किया, एक लेटर लिख दिया कि एक मेरा कोई भक्त निकला और इसको भेज रहा हूं, इसको कुछ धन संपत्ति दे देना। तो लेटर लेके वो व्यक्ति कहां गया, कुबेर जी के पास गया। कुबेर जी को लेटर दिखाया कि नारद मुनि के द्वारा प्राप्त हुआ लेटर, देखिए इसमें सिग्नेचर भी है, मुझे कुछ धन चाहिए। कुबेर जी ने देखा कि नारद मुनि ने रेकमेंड किया है, तुरंत बोला कितना चाहिए बताओ क्या चाहिए, अभी कुबेर जी के पास तो पूरा खजाना संपत्ति पड़ा हुआ है, कितना चाहिए पूछा। तो बोला कि कोई नहीं मेरे पास एक पात्र है, एक कटोरा है, एक पात्र है, इसमें आप धन संपत्ति को भर दीजिए। कुबेर जी भी सोचे कि आया भी है मेरे पास तो क्या, एक छोटा सा पात्र लेके आया, इसमें कितना धन आएगा। तो बोला नहीं इसमें जितना आता उतना दे दीजिए। तो कुबेर जी ने अपने अनुचरों को भर दिया कि जाओ इसमें उसको धन डाल के दे दो, जितना इसके अंदर आता है देखे उसको छोड़ो। तो सारे अनुचर जो भी थे कुबेर जी के वो सब गोडाउन से गए, उस धन संपत्ति को निकाल के उसके कटोरे में डालने लगे, निकाल के डालते गए डालते गए डालते गए, पूरे कुबेर का खजाना खाली हो गया, वो पात्र भरा ही नहीं। तो कुबेर जी को फोन लगाया गया, सारे लोग फोन लगाए कि कौन सा व्यक्ति है, तो पात्र भरा नहीं, हमारा पूरा खजाना खाली, पूरा गोडाउन खाली हो गया कुबेर जी आपका, कुबेर जी भाग क्या है, कौन है ऐसा व्यक्ति, आकर देखे तो सच में पूरा खजाना उनका खाली हो गया, उसका पात्र भरा ही नहीं। नारद मुनि के फोन लगाए कि किसको रिकमेंड करके भेजा है, पूरा खाली कर दिया मुझे। नारद मुनि बोला क्या बात कर रहे हो। नारद मुनि भी भाग क्या है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति निकला, उसके पास कैसा पात्र है कि पूरा कुबेर का खजाना खाली हो गया, जो कि असंभव बात है। नारद मुनि भी भाग के आए। नारद मुनि भाग के आए, पहले तो यही देखे कि उसका पात्र कौन सा है। उन्होंने उस पात्र को लिया और चेक किया और उल्टा किया तो पता चला कि वो कुछ और ही मनुष्य की खोपड़ी है जो कभी भरता ही नहीं है। तेल है मनुष्य की खोपड़ी जो कभी भी कितना भी प्राप्त कर ले उसको संतुष्टि प्राप्त ही नहीं होता है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि जरूरत कितना है, इस बात को समझना चाहिए हमको। जरूरत से ज्यादा हम कभी भी संतुष्टि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और पहली बात है कि धन संपत्ति हमको संतुष्ट कर ही नहीं सकता है, कितना भी धन संपत्ति हो जाए संतुष्ट नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत है कि धन संपत्ति से हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कितना जरूरत है उसको हम जब तक नहीं समझेंगे ना, केवल दुख ही दुख प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार का कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या यही धन कमाना है, यही पैसा कमाना है और कुछ है नहीं, और दूसरा मैं दुखी क्यों हूं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं दुखी क्यों हूं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में है कि मैं दुखी क्यों हूं। अनेक देखिए इस संसार में जितने लोग जितना भी कार्य कर रहे हैं केवल एक चीज के लिए, वो क्या है, सुख प्राप्त के लिए। धन संपत्ति पैसा कुछ भी कमा रहे एक चीज प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, क्या है, सुख, मुझे सुख प्राप्त हो जाए, है ना। कोई बोल सकता है पूरा दिन मेहनत करता है, कोई बोल सकता है नहीं मैं पूरा दिन मेहनत करता हूं अपने परिवार अपने बच्चों के लिए, लेकिन अंततः एक कॉमन चीज है क्या प्राप्त करने के लिए, हमारा परिवार सुखी होगा या हमारे बच्चे सुखी होंगे अच्छा से सेटल होंगे इसलिए मैं पूरा दिन मेहनत कर रहा हूं। क्या है लक्ष्य, क्या है, सुख प्राप्त करना है। पूरे पूरे दिन की दिनचर्या का जो भी हमारी एक्टिविटी है उसका एक ही लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति करना। तो मेरा प्रश्न यह है कि आज तक सुख प्राप्त हुआ नहीं हुआ। देखिए इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा सुबह स्कूल जाता है, जाने का मन नहीं करता उसका, लेकिन माँ उसको उठाती है, चलो 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 आ गया बहन आ गया चलो चलो नीचे, उसको भेजती है स्कूल, बहन में बैठाती है, बेचारा इतना बड़ा बैग लेके वो गाड़ी में बैठता है, लेके फिर कैसे कैसे जाता है, उसका मन नहीं रहता जाने का, बहुत कम दिन मन रहता है उसका कि कभी गया अपने खुशी मन से। एक बच्चा है, अगर उस बच्चे के पास जाके पूछो क्या तुमको अच्छा लग रहा है, सुखी हो तुम, तो यही बोलेगा नहीं, उधर टीचर डांटती है, इधर मम्मी डांटती है, बहुत ड्रेस पहनना पड़ता है स्कूल में और मेरे को पसंद नहीं है, बहुत सारी चीजें बोल देगा। छोटा बच्चा है लेकिन बहुत सारी चीजें बोल देगा, स्कूल में जाना पड़ता है, उधर कोई टीचर बैठाती है वो पढ़ाती है और डांटती भी है इत्यादि इत्यादि, तो कैसे सुख मिलेगा। तो बच्चे बोलता है कि जब भी मैं ना बड़ा हो जाऊंगा ना, जब स्कूल से कॉलेज में जाऊंगा ना, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। देखिए आप सोचिए, केवल अपने विषय में सोचिए, हम भी इससे गुजर चुके हैं, इससे हम भी गुजर चुके हैं, या फिर जो स्टूडेंट है वो इसको इमेजिन करे थोड़ा, बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे सीख मिलेगा इसमें। अभी वो बच्चा बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, कॉलेज में गया था क्या हुआ, ड्रेस का झंझट छूटा, टीचर तो डांट नहीं सकते भी, नहीं तो डांटेंगे तो उल्टा पड़ेगा उसको, अभी इससे भी मुक्त हो गया, दुख गया उसका, जो टीचर का डांट खाने का दुख था जो गया, और ड्रेस पहनने का जो दुख था वो भी गया, स्वतंत्र, मतलब थोड़ा स्वतंत्र हो गया वो कॉलेज में जाके। लेकिन उस कॉलेज में जाके उस बच्चे के पास वापस जाके पूछो क्या तुम सुख प्राप्त किए, सुखी हो गए, तो ये बोला गया नहीं एक्चुअली अभी कॉलेज में तो आया हूँ लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, कोई बाइक लेके आता है, अच्छे अच्छे जूते पहन के आते हैं और वो एकदम जेंटलमैन की तरह आते हैं, तो मेरे पास धन संपत्ति कुछ है नहीं और मैं पहन नहीं सकता हूँ, तो जिस दिन मैं मेरे को ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएगा ना उस दिन मैं सुखी हो जाऊंगा, उस दिन सुखी हो जाऊंगा। और ये सारी चीजें कैसे प्राप्त होगा, तो ये कॉलेज से मैं निकल के मैं जब कमाऊंगा ना, जॉब मिलेगा मुझे, जब मुझे पैसा प्राप्त होगा, जब धन मिलेगा, तो ये सारे चीजें मैं लूंगा और फिर मुझे सुख मिल जाएगा। अभी चलो ये भी चीजें, कॉलेज से निकला, अच्छी जॉब भी मिल गया, अच्छा पैसा भी मिल गया और अच्छी सारे चीजें प्राप्त हो गया उसको। फिर उसके पास जाइए पूछिए कि क्या सुख मिला तुमको, तो बोलेगा कि नहीं सुख तो नहीं मिला क्योंकि मेरे पास धन संपत्ति तो है लेकिन मेरे से प्रेम करने वाला कोई नहीं है, सब केवल केवल और पैसे से प्रेम करते हैं, जिस दिन मेरी सैलरी नहीं आती है, एक महीना मैं नहीं गया काम पे, छुट्टी मार के घर पे बैठा तो सुनाना शुरू कर देते हैं, केवल मेरे धन मेरे पैसे से सब लोग प्रेम करते हैं, एक्चुअली में मेरे से कोई प्रेम करने वाला नहीं है, तो प्रेम की ख्यालों में खो जाता है, तब क्या होता है? शादी। और फिर शादी जब हो जाता है उसके बाद पूछो तो सबको अनुभव, हम सबको अनुभव है। ये है पूरा रूटीन, कहीं पे भी सुख नहीं मिला, कहीं पे भी सुख नहीं मिला। तो इस प्रकार जैसे कि मान लीजिए किसी की मां बीमार है, बहुत गरीब है बेचारा, उसकी मां बीमार है। अभी सोचिए मां बीमार है, पेरेंट्स बीमार है, तो कुछ भी करेगा वो, किधर से भी उनको ठीक तो करेगा, ऐसा तो छोड़ नहीं सकता तड़पते हुए। बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, किसी के पास एक सज्जन के पास गया वो व्यक्ति, बोला मेरी मां बीमार है, आप कुछ पैसे मुझे दीजिए। मान लीजिए उसने 50,000 रुपया दे दिया, ठीक है उसको आप ट्रीटमेंट करा दो, सज्जन व्यक्ति था, दे दिया पैसा, और बोला कि 1 महीने के बाद मैं आपको दे दूंगा या 2 महीने के बाद दे दूंगा। तो सज्जन ने 1-2 महीने तक इंतजार किया, उसके बाद देखा कि वो आया नहीं, तो फोन किया, भाई तुमने 2 महीने बाद बोला तब देने के लिए पैसा, दिया नहीं मेरा पैसा। बोला कोई बात नहीं, मैं कल दे देता हूं। तो ये सज्जन कल गए उसके पास, तो वो गए तो उन्होंने बोला अच्छा आज नहीं हो पा रहा है लेकिन कल मैं जरूर दे दूंगा। फिर से सज्जन कल गए तो फिर बोलने लगा कि मैं तो बोला था आपको ना कल दूंगा। तो सज्जन बोले कि मैं कैसे विश्वास करूं, तुम तो कल भी कल बोला था, आज भी फिर कल बोल रहे हैं। बोला कोई बात नहीं, मैं दरवाजे पे लिख देता हूं, मैं आपको पैसा कल दूंगा। फिर सज्जन कल आए तो दरवाजा ही सीधा दिखाया, बोला ही नहीं, तो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है आपके सामने ही दिखा था ना, कल दूंगा। बस ये सुख इसी जैसा है, कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन वो कल आता ही नहीं, और वो व्यक्ति रोज आके कल 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 कर देके बाद में मर गया। ये सुख उसी कल के जाए। पोस्ट डेटेड चेक देखे, और कोई व्यक्ति मान लो आपको 1,00,000 रुपया का चेक दिया, बहुत खुशी होता है, 1,00,000 रुपया दिया मुझे, लेकिन डेट क्या है, 3 महीने बाद की है, तो हमको मन में यही लड्डू फूटता रहेगा, 3 महीने बाद वो क्लियर हो गया था, 1,00,000 रुपया मेरे पास रहेगा, लेकिन पता चला कि 3 महीने के बाद वो बाउंस हो गया। ये सुख इसी प्रकार है, अब लगता है कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, नहीं कल मिल जाएगा, मैं इतना बहुत प्लान कर रहा हूँ, बहुत प्लान कर रही हूँ, इतना सारा दिन भर कर रहा हूँ मेहनत, ये सारी चीजें, ये हो जाएगा, कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, लेकिन वो कल आता ही नहीं है, सुख मिलता ही नहीं है। ये उसी प्रकार है जैसे कि गधा, जानते हैं ना गधा, देखे हैं गधा, देखे हैं, है वापी में, क्या गधा, मैंने वापी में कभी नहीं देखा। तो गधा क्या करता है, धोबी उसको इस्तेमाल करता है गधे को, तो गधा के ऊपर वो बोझा रखता है, कपड़ा रखता है, नदी के पास जाता है वो कपड़े को धोने के लिए, गधे के ऊपर बहुत बड़ा वजन रखता है, वजन रख के वो कपड़े के ऊपर खुद भी बैठ जाता है, गधा लेके जाता है, लेकिन गधा जाता नहीं जल्दी, तो धोबी क्या करता है पता है, उसके सर के ऊपर एक डंडा बांध देता है, सर के ऊपर एक डंडा बांध देता है, और डंडा आगे तक ऐसा रहता है, इस प्रकार का ऐसा बांध दिया, और उस डंडे में गाजर लटका देता है। तो क्या होता है, गधा देखता है कि गाजर मिलने वाला हमको, तो गधा चलने लगता है, गधा चलने लगता है तो गाजर भी आगे, क्योंकि डंडा बंधा हुआ तो गाजर भी आगे जाता है, तो गधा सोचता है नहीं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा तो गाजर मिल जाएगा, फिर से 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा गाजर मिल जाएगा, वो चलता जाता चलता जाता डेस्टिनेशन आ जाता है, लेकिन उसको गाजर नहीं मिलता है, उसको लगता अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, लेकिन वो सुख नहीं मिलता और डेस्टिनेशन आ जाता है, और धोबी क्या करता है, डंडा भी निकलता है, गाजर भी निकलता है, उसका एक डंडा मारता है और भगा देता है। ये सुख इसी प्रकार का है, हम कितना भी प्रयास कर ले, इस संसार में कितना भी उद्यम कर ले, ये सुख हमको प्राप्त होने वाला नहीं है, जो कि हम सोच रहे हैं ना कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा इत्यादि इत्यादि, नहीं मिलने वाला है। इसलिए कुछ ऐसी ये जो 5 दिन हमने आयोजन किया ना, हमको सुख कैसे मिलेगा ये मैं आप लोग को दे के जाऊंगा 100%। सुख कैसे मिलेगा, अगर आप लोग ध्यान से सुने तो आप निश्चित रूप से सुख तो प्राप्त कर लेंगे 100%, अगर इसलिए ध्यान से सुनने का तो। और कुछ नहीं, गीता से ही बताऊंगा मैं, गीता में ही ये बात होगा, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए मैं सार के रूप में इन 5 दिनों में बताऊंगा। तो अच्छी जिज्ञासा क्या है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं दुख क्यों भोग रहे हूं या भोग रहा हूं, है ना, ये अच्छी जिज्ञासा जो कि हमको करनी चाहिए। तो इस प्रकार जिज्ञासा होना चाहिए, और इस प्रकार अच्छी जिज्ञासा को हमने समझा, तो अच्छी जिज्ञासा जब होती है ना तब हमको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी देखिए अपने से ही तुलना करिए, आप लोगों ने जिज्ञासा किया, अच्छी जिज्ञासा किया, है ना, ये अच्छी जिज्ञासा है ना, यहाँ पे गीता में आके बैठना ये अच्छी जिज्ञासा है, तो अच्छी जिज्ञासा जब करते हैं ना तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हम अच्छी जिज्ञासा करते हैं। तभी शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति अच्छी जिज्ञासा से होता है। तो प्रश्न यह है कि शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने का विधि क्या है? शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने का विधि क्या है? तो शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने का विधि शास्त्रों में तीन विधि बताया गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये तीन विधि बताया गया है शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तीन विधि को देखिए, हमें प्रमाण के साथ बात करेंगे यहां पे कोई भावुकता में ऊपर बात नहीं करेंगे, प्रमाण के साथ बात करेंगे। जैसे कि आपका बच्चा है, आप कौन से स्कूल में डालते हो उसको? जो प्रामाणिक स्कूल है उसमें आप तो चेक करते हैं ना कि प्रमाणिक है कि नहीं, मान्यता प्राप्त है कि नहीं, कल कोई बंद ना हो जाए, वो चेक करते हैं ना। तो मैं प्रमाण इसलिए दूंगा क्योंकि ऐसा आपको न लगे कि मैं गलत जगह आ गया हूं, तो इसलिए प्रमाण के साथ बात करेंगे, बिल्कुल भावुकता में बात नहीं करेंगे। तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की तीन विधियां हैं, क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान प्रमाण है और शब्द प्रमाण है। ये तीन विधि है शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हमारे इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त हुआ ज्ञान है, हाथ से। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं देखूंगा तभी मानूंगा, तो इंद्रियों से देखूंगा तब मानूंगा। तो ये हमारे इंद्रियों से जो भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, इंद्रियों से प्राप्त हुआ ज्ञान। लेकिन ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण है। तो अपूर्ण चीज से पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, सब लोग यहां पे बैठे हुए हैं, आप चेयर पर बैठ सकते हो, सब लोग यहां पे बैठे हुए, अभी लाइट चला जाए और तुरंत आवाज आने लगे कि अरे सर्प 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 सर्प, तब तक लाइट आ जाए और पता चला कि वो सर्प नहीं रस्सी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी आंख अपूर्ण है, हमारी ये जो आंख रूपी इंद्रियां है वो अपूर्ण है। वो उजाले में सही चीज को देख सकती है, अंधेरे में नहीं देख सकती है, नहीं तो हम रस्सी को सांप समझ बैठे हैं और चिल्लाने लगे और लाइट आया पता चला नहीं सर्प नहीं, ये तो रस्सी है। इसका मतलब क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है कि नहीं? इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमको मालूम चल रहा है ना? लेकिन कुछ हो तो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है ना इस दीवार के पीछे। इसका मतलब क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, वो पूर्ण को ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकती। तो ये इंद्रियों से हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि ये मोहग्रस्त होती है, ये अपूर्ण है इंद्रियां। इससे हम जैसे कि यहां पे हवा है कि नहीं? हवा है ना, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हवा है कि ऐसे ही सब बैठे हुए है ना, लेकिन हम देख पा रहे हैं उसको? नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम हवा को नहीं देख सकते। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे एक चीज और मैं बताता हूं, जैसे कि जैसे मान लीजिए यहां पे तीन ग्लास रखते हैं, ठीक है, तीन ग्लास रखते हैं, बीच वाले ग्लास में नॉर्मल पानी भर देते हैं और इधर वाले ग्लास में पूरा फ्रीज का पानी, बर्फ का पानी रखते हैं, ठीक है, और इधर वाले ग्लास में एकदम हॉट वाटर रखते हैं, इधर एकदम गर्म पानी और बीच में नॉर्मल पानी और इधर एकदम फ्रीज वाला पानी। तभी देखिए कि फ्रीज वाला, मान लीजिए आप फ्रीज वाले पानी में हाथ डाले, और तुरंत हाथ को उठाकर नॉर्मल पानी में डाले तो क्या लगेगा आपको? क्या महसूस होगा? गर्म महसूस होगा, ठीक है। आपने फ्रीज वाले पानी में से हाथ निकाला और नॉर्मल वाटर में हाथ डाला तो क्या लगा आपको? महसूस क्या हुआ? गर्म। अभी इधर क्या है? गर्म पानी है, गर्म पानी में हाथ डालिए और वही हाथ उठा के इस नॉर्मल पानी में डाले तो आपको क्या लगेगा? ठंडा लगेगा, क्योंकि गर्म में से निकाल के नॉर्मल में डाला, तो है ना। मतलब इंद्रिया अपूर्ण है, पानी वही है लेकिन अपूर्ण होने के नाते हमको अनुभव अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे एक और समझ सकते हैं, शक्कर खा के आप संतरा को खाएंगे तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा, लेकिन नींबू खा के संतरा को खाएंगे तो मीठा लगेगा, है ना। संतरा का रूप वही है, उसमें टेस्ट वही है, लेकिन शक्कर खा के खाया तो खट्टा लग रहा है और नींबू खा के खाया तो मीठा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती। इस प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हमारी इंद्रियां कभी भी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं करती। इसलिए जो कहते ना मैं देखूंगा तभी मानूंगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम देख ही नहीं सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें अपूर्णता है, मोहग्रस्त होने की प्रवृत्ति है और एक दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है उन इंद्रियों में। सब्जी वाला हमको धोखा देता है, कुछ कम देता है, ज्यादा दिया तो सड़ा हुआ निकलेगा, इत्यादि इत्यादि, तो एक दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति इत्यादि इत्यादि। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम सही ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो दूसरा ज्ञान क्या है, वह क्या है, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब हम कुछ चीज को अपने आंख से देखते हैं और उसको अपने बुद्धि में फिट करते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं। एक ज्यादातर कौन लोग करते हैं पता है, वैज्ञानिक लोग देखते हैं और बुद्धि में फिट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, बहुत सारे रिसर्च करते हैं, लेकिन यह भी अपूर्ण है। जैसे वैज्ञानिक लोग, ये तो वेद और शास्त्रों में वर्णन है ही, लेकिन कहते हैं कि इस पृथ्वी से भी बड़ा सूर्य है, पृथ्वी से बड़ा सूर्य है, लेकिन कितना दिखता है, छोटा, बहुत छोटा दिखता है। तो वैज्ञानिक लोग ने क्या प्रस्तुत किया, क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए छोटा है, लेकिन कितना बड़ा है वो उसको नहीं जान पाए। तो ये जो अनुमान प्रमाण है ना, वो भी शुद्ध ज्ञान, सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए ठीक है नहीं है। तो अभी एक ही बचा केवल, वह है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के द्वारा ही हम सही चीज को, सही शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वह कैसे है कि जो शब्द प्रमाण है इस पे हमको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तीन ही है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष भी फेल हो गया, हमने देख लिया अपूर्ण है, इंद्रिया नहीं प्राप्त कर सकते, अनुमान भी फेल हो गया। अभी बचा है एक ही शब्द प्रमाण। वो शब्द प्रमाण यह है कि कोई बोलता है उसके ऊपर विश्वास करना। जैसे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच चल रहा है ना, तो अगर हमको क्रिकेट मैच का हमको स्कोर जानना तो हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाके सुनेंगे नहीं ना, क्या करेंगे, टीवी खोलेंगे, गूगल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, लाइव देखेंगे, कमेंट्री सुनेंगे, मतलब उस कुछ कमेंट्री हम सुने हैं और उस पर हमने विश्वास किया। कमेंट्री सुन के ऐसा तो नहीं होता, नहीं भाई ये गलत स्कोर बता रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण जो है यही एक ऐसा प्रमाण है जिससे हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो जैसे, और देखिए ये करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट हम डेली यूज करते हैं ना, वो टूथपेस्ट पे यूज करते हैं और कंपनी को विश्वास करते हैं हम, मान लो मैं बोलूं उसमें जहर है तो विश्वास करते हैं, लिखा रहता है कि भाई अच्छी है, आयुर्वेदिक है, ये है वो है, इंग्रेडिएंट्स भी लिखा रहता है, इत्यादि इत्यादि, हम विश्वास करते हैं कि नहीं, लिखा हुआ है विश्वास करते हैं, लेकिन उसमें अगर ऐसा सोच ले कि नहीं इसमें जहर हो तो हम यूज नहीं करेंगे। दूध वाले के ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, कहीं ऐसा सोचते हैं कि अरे भाई दूध भी वाइट होता है और जहर भी वाइट होता है, कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला है, विश्वास करते हैं ना जो दूध वाले के ऊपर, है ना, करते हैं, करना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन ही नहीं चल सकता, हम कोई कंक्लूजन ही नहीं कर सकते। तो इस शब्द प्रमाण के ऊपर हमको विश्वास करना पड़ेगा। कार में जाते हैं ड्राइवर के ऊपर विश्वास करते हैं, फ्लाइट में जाते हैं पायलट के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना, इतने घंटों घंटों तक सफर करते हैं लेकिन विश्वास करते हैं कि नहीं हमको सही जगह पे पहुंचाएगा वो, विश्वास करते हैं नहीं है? सैलून में जाते हैं बाल कटवाते हैं, उस नाई के ऊपर विश्वास करते हैं कि गलान दुन काट दे, विश्वास करते हैं कि नहीं है? तो ये सारे चीजों पर हम विश्वास करते हैं। इस शब्द प्रमाण जो है ना, ये भगवान के मुख से निकला हुआ है, वेद जो है ना भगवान के मुख से निकला हुआ है। तो वेद अगर हमको कुछ बताता है और वेदों का जो सार भगवद गीता हमको कुछ बताता है, उसमें विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जीवन भर दुखी रहेंगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है, तो इसको हमको विश्वास करना ही चाहिए, ठीक है। तो शब्द प्रमाण जो कि भगवान के मुख से निकला हुआ है और इस पे विश्वास करना ही है और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। आप बोलेंगे नहीं कैसे हम इतना ऐसा विश्वास कर ले, तो मैं कुछ चीजों को बताता हूं, ऐसे तो हजारों प्रमाण है लेकिन मैं कुछ चीजों को आप लोगों को बताता हूं कि जो गोबर, गाय का गोबर है, उसमें बहुत सारे एंटीसेप्टिक तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं गाय के गोबर में, गोबर गोमूत्र में बहुत सारे गुणों को पाया जाता है कि नहीं, ये विश्वास करते हैं सब लोग। वैज्ञानिक लोग ने आज से 500 साल पहले ये सिद्ध किया कि गोबर के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वेद और शास्त्रों में हजारों साल पहले से वर्णन है कि गोबर के अंदर, गाय के गोबर और गोमूत्र के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, ये पहले से वर्णन है, लेकिन उसके ऊपर वैज्ञानिक लोग विश्वास नहीं किए और उन्होंने क्या किया, रिसर्च करना चालू किया। और रिसर्च करते 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 एक दिन कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं, गाय के गोबर और गोमूत्र में बहुत सारे गुण हैं, मेडिसिन के जैसा गुण है, बहुत सारे काम कार्य में आ सकता है। लेकिन वही विश्वास कर लिए होते तो इतना रिसर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वेद और शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है वनस्पति में जीवन है, पेड़ों में जीवन है, वनस्पति में जीवन है। एक कौन साबित किया? जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया कि पेड़ों में जीवन है, लेकिन वेद और शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है कि पेड़ों में जीवन है, वनस्पति में जीवन है। तो पहले से लिखा हुआ है लेकिन उस पर रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कुछ कैलकुलेशन पे पहुंचता है तो उसी चीज को हम मानते हैं है? लेकिन वेद और शास्त्रों में पहले से लिखा, पहले से वर्णन है, पृथ्वी गोल है। वेद शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वैज्ञानिक लोग उसके ऊपर बहुत रिसर्च किए, क्योंकि वो यही मान रहे थे कि पृथ्वी सपाट है, गोल नहीं है। लेकिन रिसर्च करते करते इस जगह पे पहुंचे कि नहीं, पृथ्वी गोल है, ये रिसर्च करके दिया है लोगों ने। माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक, शुरुआत से लेकर 9 महीने तक कौन से पोजीशन में रहता है? भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान वर्णन करते माता देवती को देते हुए, बहुत पूरा 9 महीने गर्भ के अंदर बालक कैसा है, हर एक दिन कैसे उसका विकास होता है, पूरा कैलकुलेशन गणित के साथ दिया हुआ है शास्त्रों में, कैलकुलेशन के साथ दिया हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक लोग उसके ऊपर रिसर्च कर करके अभी बहुत सारे मशीनों को निकाला और उससे वो करते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें होता है, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन पहले से दिया हुआ है वेद और शास्त्रों में। तो इस प्रकार से रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन रिसर्च देखिए, रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक लोग, ठीक है, ये अच्छी बात है कि बहुत सारे जानकारियां प्राप्त होती है, मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो जो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ना, वो पहले से वेद और शास्त्रों में वर्णन है। मैं रिसेंटली बता रहा हूं कि अभी क्या निकाला, क्या रिसर्च हुआ वैज्ञानिकों द्वारा, चंद्रयान 2 हुआ ना रिसर्च, लेकिन वो फेल हुआ। उन लोग चंद्रमा पे लैंडिंग करने का सोच रहे हैं ना, वेद और शास्त्रों में बताया गया कि चंद्रमा पे लैंडिंग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पूर्ण रूप से बर्फ है, केवल ये वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है, वहां पे बर्फ ही बर्फ है, लैंडिंग नहीं हो सकता वहां पे। लेकिन इतने रिसर्च किए, इतने अरबों रुपया खर्चा किया, अंततः क्या हुआ? फेल। दोबारा करेंगे, फिर से फेल होंगे और अंत में कंक्लूजन निकालेंगे कि चंद्रमा पे नहीं जाया जा सकता है, कि वेद और शास्त्रों में इस बात को लिखा हुआ है पहले से। खैर, रिसर्च करने में बहुत सारी चीजें पता चलता है, क्योंकि कुछ घटनाएं जो घटनी तो रहती है ना, कि सुनामी आने वाला इत्यादि, ये सब रिसर्च में पता चल जाता है और पहले से थोड़ा इंटीमेशन दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द प्रमाण है ना, इसके ऊपर हमको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वेद है शब्द प्रमाण, वेद जो कि पहले से सारे चीजें लिखा हुआ है और उसके ऊपर, और यही है पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का सही मार्ग। तो इस प्रकार हमने कितना बजा टाइम, क्या हुआ है? 8:30, ठीक है, 10 मिनट और करते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। तो इस प्रकार हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 प्रमाण को हमने देखा, क्या क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण वह अपूर्ण है, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अनुमान प्रमाण भी अपूर्ण है, और शब्द प्रमाण के द्वारा ही हम सही और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये शब्द प्रमाण क्या है? वेद है, वेद जो कि हमको सही ज्ञान दे सकते हैं। वेद, ये वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और ये बहुत विशाल है। ये सारे जो वेद है ना, बहुत विशाल है, हमारे बुद्धि से परे इतने सारे ग्रंथ हैं, बहुत विशाल है। लेकिन कलयुग के जीवों की स्थिति देखते हुए, क्योंकि पहले जो वेद थे ना, ये श्रुतियों में थे, श्रुतियों मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, उसको पूरा याद हो जाता था। लेकिन कलयुग की स्थिति देखते हुए वेदव्यास जी ने देखा कि प्रायण अल्पायुपा सभ्य, कलयुग में लोगों की बुद्धि जो होगी ना, मंद बुद्धि होगी, और उनकी आयु भी बहुत कम होगी, बुद्धि भी मंद है, आयु भी कम है, उनके भाग्य भी नहीं है कलयुग के जीवों का। इसलिए कलयुग के जीवों की स्थिति को देखते हुए वेदव्यास जी ने ये जो श्रुतियों में थे ना वेद और शास्त्र, ये वेद उसको क्या किया, लिखित रूप में दे दिया, लिख दिया उसको, क्योंकि लिख के क्योंकि हम सुन के कहां याद रखते हैं। मैं अभी सेमिनार है, 5 दिन करेंगे, भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद यही 5 दिन मैं एजिटीज करूं तो भी लोग सुनेंगे, क्योंकि भूल गए नहीं, स्रोत नहीं हो पाता है। इसलिए ये स्थिति को वेद व्यास जी जानते थे, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ है, तो स्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उसको लिखीबद्ध किया, ग्रंथ के रूप में दे दिया। फिर भी ये बहुत विशाल है, और ये देखिए इतने विशाल है, मैं आपको वर्णन करूं कि जब भी मुगलों का राज जब चल रहा था ना, मुगलों का जब शासन चल रहा था ना, मैंने इतिहास पुराण में पढ़ते ना, इतिहास में मुगलों का जब शासन था, तो उस समय मुगलों का जो सेना है ना मथुरा में, वो अपना कैंप लगाया था कुछ दिन को रुकने के लिए। हाँ आप तैयारी कर सकते जाके, और नीचे खिचड़ी प्रसाद नीचे रखा था वॉचमैन, हाँ किसी के थोड़ा मंगवा लेते एक डब्बा। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो ये वेद मैं बता रहा था कि वेद और शास्त्र कितने विशाल थे, हो जाएगा नहीं तो अंत में लेके आ जाएगा। तो वेद और शास्त्र इतने विशाल है कि जब मुगल लोग आए थे ना, जब वो मथुरा में अपने कैंप को रख के कुछ दिन रुके हुए थे ना, तो उस समय उन मुगलों ने ना 6 महीना रुके थे, और 6 महीना उन्होंने मांस को खाया था, मांस खाते थे, और वो मांस किस पे पकाया पता है, हमारे वेद और शास्त्र को उन्होंने ईंधन बनाया, हमारे और वेद और शास्त्रों को ईंधन बना के उन्होंने मांस को पकाया था। इसलिए ये मुगल जो है ना हमारे संस्कृति के ऊपर बहुत भयंकर प्रहार किया था इन लोगों ने संस्कृति के ऊपर। 94% जो वेद, 94% हरे कृष्ण 94% वेद जो है ना, सुनाई दे रहा है ना, 94% वेद उन्होंने जला दिया, पूरा ईंधन बना दिया उसका, और उन्होंने मांस को पकाया। अभी बचा कितना, केवल 6% वेद ही आज उपलब्ध है हमारे पास। हाँ फिर भी कितना विशाल लगता है, कितने सारे ग्रंथ शास्त्र है, सोचिए ये केवल 6% है, 94% को जला दिया गया, 94% को जला दिया गया। तो ये बहुत विशाल है वेद, जो कि अलौकिक भाषा में है। अलौकिक भाषा मतलब हमारी बुद्धि से परे है। दो भाषाएं होती है, एक लौकिक भाषा, ये संस्कृत में है, लौकिक और अलौकिक, दो प्रकार की संस्कृत होती है। एक लौकिक संस्कृत जो कि हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, और एक होता अलौकिक संस्कृत जो कि वेद और शास्त्र जिसमें लिखे गए हैं सारे चीजें। तो हमारा ठिकाना तो लौकिक संस्कृत में भी नहीं है, हम उसमें भी जीरो है। लौकिक संस्कृत में तो अलौकिक संस्कृत को बात ही छोड़ो, कहां से समझेंगे हम अलौकिक चीजों को, क्योंकि हम लौकिक जो संस्कृत है उसको भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान ने देखा कि ये जो कलयुग के जीव जो है ना, ये समझ नहीं पाएंगे सारी चीजों को। तो उन्होंने क्या किया, सारे वेद और पुराण जितने भी थे, जो जो 6% बचे हुए थे, वो सारे चीजों को उन्होंने इकट्ठा करके एक जगह पे लाया, और इस भगवदगीता में केवल दे दिया, केवल ये भगवदगीता में पूरा एक जगह पे दे दिया, केवल इन 700 श्लोकों में दे दिया भगवान ने। और किसको माध्यम बनाया, अर्जुन को माध्यम बनाया, महाभारत के उस युद्ध स्थल में अर्जुन को माध्यम बनाया, और माध्यम बना के पूरे संसार को ये गीता प्रदान कर दिया। ये वेद जो है सार, हाँ वेद और वेदों का सार जो है ना ये भगवदगीता है, वेदों का सार भगवदगीता है, जो कि अर्जुन को माध्यम बनाकर उन्होंने दिया। तो सारे वेदों का जो सार है वो क्या है, भगवदगीता है। तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना, सारे उपनिषद जो है, सारे वेद और उपनिषद भगवान ने क्या किया, अर्जुन को बछड़ा बनाया। जैसे गाय दूध किसको देती है, बछड़े के लिए दूध देती है, वो तो हम है कि बछड़ा हटा के हम खुद ले लेते हैं, लेकिन वो दूध देती है किसके लिए, गाय बछड़े के लिए। इसलिए अर्जुन को क्या किया है भगवान ने, उनको बछड़ा बनाया, और ये सारा वेद और शास्त्रों का जो ज्ञान है उसके माध्यम से हमको भगवत गीता के रूप में प्रदान किया। तो इस भगवत गीता में 700 श्लोक है। और अभी देखिए प्रश्न ये उठता है कि कौन सी भगवत गीता, क्योंकि बहुत सारे भगवत गीता है, बहुत सारे भगवत गीता, मैं आपको यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, कोई आएगा दूसरे जगह से दूसरा भगवत गीता दिखाएगा, तीसरा भगवत गीता दिखाएगा। प्रश्न ये उठता कौन सी भगवत गीता, तभी थोड़ा सा, क्योंकि हम आज केवल भगवत गीता के परिचय इंट्रोडक्शन आप भगवत गीता ही कर रहे हैं, तो केवल मैं भगवत गीता के बारे में बता रहा हूँ। कल से हम विषय के ऊपर जाएंगे, इसके अंदर प्रवेश करेंगे, आज केवल ऊपर केवल इसके विषय में जान देते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अभी भगवान ने वेद और शास्त्रों को क्या किया, इस गीता के अंदर डाल दिया, तभी कौन सी गीता पढ़े हम, कौन सी गीता रखे। तो देखिए गीता तो एक ही है, आपको कोई भी गीता देगा ना उसमें तो श्लोक वही है, कोई भी गीता देगा ना वही 700 श्लोक आपको मिलेंगे। गीता एक ही है जिसमें कि 574 श्लोक भगवान ने बोला है, और 84 श्लोक जो है अर्जुन ने बोला है, और 42 जो है संजय ने बोला है, और एक धृतराष्ट्र ने बोला है। टोटल मिला के 701 श्लोक है इसके अंतर्गत। तो सब गीता में यही है, इतना ही श्लोक है। लेकिन क्या होता है कि ये संस्कृत में है, संस्कृत में है, तो अभी संस्कृत में हम तो कैसे है तो देख ही रहे, हमारा स्थिति क्या है संस्कृत में, हम जीरो है संस्कृत में। इसलिए हम समझने के लिए क्या करते हैं, किसी ऐसे पंडित, किसी ऐसे विद्वान, किसी ऐसे ब्राह्मण या किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मिलते हैं, है ना, क्योंकि वो हमको समझाएगा बताएगा, तो या उनका उनके ग्रंथों को लेते हैं, क्योंकि ऐसे पंडित ऐसे जो संस्कृत को जानने वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हिंदी में उसका अनुवाद कर देते हैं, वो संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। तो अनुवाद करते हुए कभी कभी क्या करते हैं, वो संस्कृत के वो सही चीजों को वो प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसलिए भगवान गीता में ही बात को बताए हैं कि हमको भगवद्गीता उसको वो भगवद्गीता पढ़ना चाहिए जिसको भक्त ने लिखा हुआ है, भक्त ने। देखिए पॉलिटिशियन भगवद्गीता लिखेगा ना तो उसमें पॉलिटिक्स के बारे में लिखेगा, क्योंकि वो तोड़ मरोड़ के उस प्रकार का लिखेगा। ऐसे कई सारे बहुत सारे ऐसे बाबा जी लोग हैं जो कि भगवद्गीता के अर्थों को अलग अलग प्रकार से बताते हैं। जैसे भगवान भगवद्गीता में अंत में बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर त्याग कर अर्जुन मेरे शरण में आओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो अनेक तथाकथित जो बाबा जी लोग हैं वो क्या करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ो, मम बाबा शरणम गत, वो मेरे शरण में आओ और मेरी भक्ति करो और तुमको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इस समस्या है सबसे बड़ी, इस प्रकार के अर्थों को तोड़ मरोड़ देते हैं जिसमें संसार के लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमको पहले तो यह जानना है कि किसकी भगवद्गीता को हमको पढ़ना है। देखिए मैं बोला ना, इसलिए यहां पे हम केवल भावुकतावश सारे चीजें प्रवचन ये सारे चीजें नहीं करने वाले, थोड़ा बुद्धि प्रदान चीजें हम करते हैं, क्योंकि संसार के लोग इसी सारे चीजों में फंस गए हैं। कभी इस बाबा के शरण में जाते हैं, पता चलता है कि वो बाबा खराब निकला कुछ सालों के बाद, कभी पता चलता है वो जेल में चला गया, कभी ये होता है, इत्यादि इत्यादि सब लोग आप जानते हैं, न्यूज खबर इत्यादि सब लोग पढ़ते हैं। देखिए सब लोग जानते हैं कि आज संसार में कितने भ्रमित करने वाले तथाकथित बाबा गुरु सन्यासी इत्यादि भरे पड़े हुए हैं, जो कि संसार के सारे लोग को भ्रमित किए हुए हैं। इसलिए बुद्धि लगाना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, केवल भावुकता दिखाते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हम जो बता रहे हैं ना, ये बुद्धि लगाने के लिए बता रहे हैं, बुद्धि प्रदत्त बातों को बता रहे हैं। हमको कभी भी बिना रिसर्च किए, बिना जाने किसी भी बाबा का शरण, किसी भी तथाकथित इत्यादि लोगों का शरण लेना चाहिए, कम से कम बुद्धि तो लगाना चाहिए। बुद्धि लगा के ही कर, हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हमको बुद्धि लगाना, कैसे छानना है कि भाई ये सही बाबा है कि गलत बाबा है, ये सारे चीजों को हम अगले सत्र में, कल के सत्र में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि कौन सी भगवद्गीता पढ़े, तो भगवद्गीता वही पढ़ना है जिसको किसी भक्त ने लिखा है, भगवान का भक्त ने लिखा है उसी को पढ़ना है, जो भगवान की भक्ति करता है उसका पढ़ना है गीता। तो इस प्रकार से ये जो भगवद्गीता लिखा है, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। देखिए वो गीता को पढ़ भी रहा है और रात रात तक अनुवाद करते थे, 24 घंटा में केवल 2 घंटा सोते थे, 2 घंटा केवल मात्र सोते थे, और पूरा दिन वो उस ग्रंथ को लेकर हमारे लिए दिया हुआ है भगवान के। आप बोलेंगे कि आपके परम गुरु है इसलिए आप ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा देखिए मैं बोला ना, प्रमाण लूंगा। देखिए क्या होता है कि फलेन परितुष्यति, फल से यह जाना जा सकता है कि यह सही है कि गलत है। जैसे कि आपने राइस चढ़ाया हुआ है कुकर के ऊपर, इसके चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ है, तो क्या राइस का हर एक टुकड़ा आप दबा दबा के देखते हो पका है, क्या करते हो, एक निकालते हैं और उससे क्या पता चलता है, पूरा पका हुआ है ना। फलेन परितुष्यति, तो ये देखिए कि फल क्या है उसका, उसका प्रभाव क्या है, क्या उस बाबा के शरण में जाने से, उससे उसकी गीता पढ़ने से क्या उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ गया, क्या उसने गलत कार्य को छोड़ दिया, गलत काम करना बंद कर दिया, नहीं बंद किया, मतलब कुछ ना कुछ दोष है, कुछ ना कुछ दोष है। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा बुद्धि लगा के जानना चाहिए, हमेशा छान के पानी पीना चाहिए इस विषय में जब आता है, नहीं तो हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं उनके जीवनी में, या तो पूरे इस मोमेंट की जो उन्होंने स्थापना किया इस्कॉन का, लगभग 50 साल पूरा हो गए हैं, इस 50 सालों के अंदर लाखों करोड़ों भक्त बने हुए हैं जिन्होंने गलत कार्यों को छोड़कर वो भक्त बन गए हैं। बड़े से बड़े विदेश में हैप्पी लोग, जो कि हमेशा दो चरस गाजा लेते थे और रोड पे नंगे पड़े रहते थे, ऐसे लोग आज बड़े बड़े सन्यासी बन गए, बड़े बड़े सन्यासी बन गए, पूरे जीवन को बदल दिया है,
है, उनकी गीता पढ़कर कितने सारे लोग आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन उस गीता को प्राप्त किए तो पता चला कि नहीं भाई, आत्महत्या करना बहुत बुरी चीज है। जीवन में कितना भी फ्रस्ट्रेशन आ जाए लेकिन आत्महत्या नहीं करना है, क्योंकि जितना अभी फ्रस्ट्रेशन है ना, आत्महत्या करने के बाद उससे लाख गुना ज्यादा उस व्यक्ति को कष्ट होता है, लाख गुना ज्यादा होता है। तो कितने लोग आत्महत्या करने की स्थिति में थे, गीता उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। इसलिए अभी दिसंबर महीना आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, रोड रोड पे खड़े होकर खड़ा रहते हैं, स्टॉल लगाते हैं कि गीता को लीजिए और पढ़िए, क्योंकि हमको मालूम है कि जिस दिन वो घर में लेके जाएगा गीता, उसको पढ़ेगा ना, उसका सारा जीवन अच्छा हो जाएगा, सुख की प्राप्ति होगा उसको। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ने से घर बार छूट जाएगा, त्याग हो जाएगा, कुछ काम के नहीं रहेंगे। आप याद करें कि भगवान ने गीता किसको सुनाया, अर्जुन को सुना। अर्जुन कौन था, छत्री था और समाज में बहुत बड़ा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि वो निष्काम कुछ काम धंधा नहीं करता था, बल्कि क्या किया, कुछ लोग ऐसा धारणा है लोगों की गीता पढ़ने से क्या होगा, व्यक्ति घर बार छोड़ देता है या उसकी मति दूसरे जगह लग जाती है, वो मंदिर ही भागता रहता है। ऐसा नहीं है। आप याद करिए कि अर्जुन जब लोगों को देखा महाभारत के युद्ध में तो मोहग्रस्त हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये तो सारे हमारे लोग हैं, हमारे ही पुत्र परिजन है, हमारे ही रिलेटिव वाले हैं, मैं इनको मार के पाप को भोगूंगा क्या। उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया, भीख मांग के खाऊंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन गीता सुना के भगवान ने उससे काम करवाया, याद करिए, गीता सुनाया और उसके बाद वो अपना कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, उसके कर्तव्य को जागृत किया। तो ये गीता हमारे कर्तव्य को जागृत करता है, ऐसा नहीं कि हमको निष्काम बना देता है, छोड़वा देता है, ऐसा नहीं। हमारा जीवन जिस प्रकार से कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, कोई मान लो ये कंप्यूटर ही खरीदे, कुछ भी खरीदे, लैपटॉप खरीदे, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट खरीदे, तो एक मैनुअल आता है, उस मैनुअल के अनुसार उसको ऑपरेट करना रहता है। अगर मैनुअल के अनुसार ऑपरेट नहीं किए तो वो चीज बिगड़ जाती है। इसी प्रकार ये जो शरीर रूपी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो शरीर रूपी यंत्र है ना, इसको चलाने के लिए भगवद गीता है, इसको जब हम पढ़ेंगे तब हम हमारा जीवन हम बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो आज क्या क्या चर्चा किया, हमने यह चर्चा किया कि जो कि सबसे पहला जिज्ञासा, जिज्ञासा होना चाहिए मनुष्य जीवन अगर प्राप्त हुआ है तो व्यक्ति को जिज्ञासा होना चाहिए, और दो प्रकार की जिज्ञासा है, एक बुरी जिज्ञासा है, एक अच्छी जिज्ञासा है, इसकी चर्चा की है। और अच्छी जिज्ञासा, अच्छी जिज्ञासा क्या है, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं दुख को क्यों भोग रहा हूं, ये अच्छी जिज्ञासा है। इस प्रकार अच्छी जिज्ञासा अगर होती है तो हमको क्या प्राप्त होता है, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या तरीके है, इसको हमने जाना कि शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीन प्रकार के प्रमाण है, वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इसकी चर्चा हमने किया। जो कि शब्द प्रमाण जो कि वेदों के द्वारा आया हुआ है, जिसपे हमको विश्वास करना चाहिए, वही एक माध्यम है जिससे हम शुद्ध और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सार के रूप में भगवान ने किस प्रकार से सारे वेद उपनिषदों को सार के रूप में इस भगवद्गीता में डाला, और ये है आज का इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद्गीता, भगवद्गीता का परिचय। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, शुद्ध ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, कौन है सही गुरु, ये सारे चीज़ों के बारे में कल चर्चा करेंगे। फिर आगे आगे दिनों में फिर हम इनके विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, भगवान परमात्मा दुख क्यों भोग रहे हैं इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे चीज़ें, ये शरीर क्या है, कैसे चलायमान है, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम आगे के सत्रों में हम करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि जितने लोग भी आए हैं समय पर आ जाए, अगर 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे पूरा आ जाए इधर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के, क्योंकि मैंने स्किप किया बहुत सारे चीज़ों को, स्किप किया पूरा चीज़ें जो मेरे को बताना था वो सारी चीज़ नहीं बताया, मैंने स्किप करते करते कुछ चीज़ों को नहीं बताया और कुछ चीज़ों को आप लोग के सामने बताया। तो जितना समय पे आएंगे हम उतनी ज़्यादा चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि हम रात तो यहाँ बैठ नहीं सकते, जाने का टाइम फिक्स है, तो मेरा निवेदन है कि आने का टाइम भी फिक्स हो जाए तो अच्छी बात है, तो हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम सीख सकते हैं। तो आज हमने कोई प्रश्न उत्तरी नहीं किया, लेकिन आपके माइंड में कोई भी प्रश्न हो आज के रिलेटेड तो आप उसको लेकर आइए, कल हम आपके प्रश्नों से ही शुरू करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी प्रश्न आप देखिए, प्रश्न बनाइए, नई प्रश्न उठ रहा है ना, ये 5 दिनों में दुनिया भर के प्रश्न बनाइए आप, क्या है, बहुत सारे प्रश्न है अंदर चल रहा है लोगों को, क्या क्या समस्या है, हर एक समस्याओं का समाधान मैं आप लोग को इस 5 दिनों के अंदर दूंगा। इसलिए अपना प्रश्न नहीं है तो प्रश्न को बनाइए, ये सारे चीजें करिए, हम उसको एक एक करके करेंगे, ठीक है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथरा श्रीमद भगवद गीता की। तो अभी सब लोग के लिए प्रसाद है, मेरे ख्याल से प्रसाद ज्यादा आया रहेगा मंदिर से। मैंने 30-35 लोग का बोला था, 35 लोग कम से कम तो आया रहेगा। हाँ तो मंदिर से भी प्रसाद आया है, माता जी ने भी कुछ बनाया है। तो देखिए मैनेज करिए कैसे कैसे, जो नहीं भी आए उनको पहुँचाइए फ्लोर पे इत्यादि इत्यादि। हाँ कम लाएंगे, अभी पहला दिन था तो कुछ अभी है। क्या समस्या, अगर प्रसाद घट गया तो समस्या है ऐसा। तो डिश है, डिश है यहाँ पे, डिश है और डिश निकालो मत ये सब करो और यहीं पे सब लोग बैठ के खाइए। हाँ हाँ इधर ही। अच्छा अभी कल के दिन में आप चाहिए तो कुछ लोग को लेके आ सकते हैं, आपके पास कल का दिन का ऑप्शन है। और परसों भी ठीक है, लेकिन लास्ट के दो दिन फिर किसी नए लोग को मत लाइएगा, क्योंकि फिर उनके क्रॉस होगा, ऊपर से जाएगा वो, मतलब नहीं उनको बैठना ना बैठना ऐसा। हाँ वो चाहिए तो उनके लिए प्रसाद लेके उनके घर पे छोड़ देने का। लेकिन कल परसों तीन दिन जो है ना, कल परसों और भी लोगों को आप ला सकते हैं अगर इस प्रकार का कोई इंटरेस्टेड है तो, है ना।